कांग्रेस की मंजूरी। सितंबर में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। इसे अपना आंदोलन मान लिया। विरोधियों में प्रमुख सीआर दास, उनका विरोध विधान परिषदों लेजिस्लेटिव असेंबली के बहिष्कार को लेकर था। कुछ ही दिन बाद इनके चुनाव होने वाले थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमति रखने वालों ने भी कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और चुनाव में भाग नहीं लिया। ज़्यादातर मतदाताओं ने भी इसका बहिष्कार किया। दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस समय तक कांग्रेस में अंदरूनी विरोध लगभग खत्म हो चुका था। विधान परिषदों के चुनाव हो चुके थे, इसलिए इसके बहिष्कार का विवादास्पद मुद्दा भी खत्म हो गया था। सी आर दास ने ही इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव काफ़ी लंबा चौड़ा था। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के तहत तमाम चीज़ें आती थीं, जैसे उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि बाद में जनता को सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने और कानून की अवज्ञा, जिसमें कर अदायगी न करना भी शामिल हो, के लिए भी कहा जा सकता था। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना और स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों के गठन का भी प्रस्ताव था। हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन देने तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने की बात कही गई थी। छुआछूत को मिटाने और हर हाल में अहिंसा का पालन करने का सख्त निर्देश था। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि यदि इन कार्यक्रमों पर पूरी तरह अमल हुआ तो एक वर्ष के भीतर ही आज़ादी मिल जाएगी। इस तरह नागपुर कांग्रेस सम्मेलन ने जन आंदोलन के संविधान इतर तरीके अपनाने की घोषणा कर दी। क्रांतिकारी आतंकवादियों के तमाम गुटों ने ज़्यादातर बंगाल के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। नए कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में भी कई परिवर्तन किए गए। उद्देश्य भी बदल गया। पहले उद्देश्य था संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की प्राप्ति। अब उद्देश्य था अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति। गांधी जी द्वारा तैयार कांग्रेस के नए संविधान ने भी कांग्रेस के चरित्र को काफ़ी हद तक बदला। अब कांग्रेस के रोजमर्रा के काम को देखने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की गई। तिलक ने 1916 में ही इसका प्रस्ताव रखा था, पर नरमपंथी कांग्रेसियों के विरोध के कारण इसे मंजूरी नहीं मिली। गांधी जी जानते थे कि किसी आंदोलन को लंबे समय तक चलाने के लिए कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो साल भर का सारा कामकाज देखती रहे। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों को असली जामा पहनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। इनका गठन भाषाई आधार पर किया गया, जिससे इनमें स्थानीय लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। इसके बाद कांग्रेस ने गांवों कस्बों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया। गांवों और कस्बों में भी कांग्रेस समितियां गठित की गईं। सदस्यता फीस 4 आना साल कर दी गई, जिससे गरीब लोग भी सदस्य बन सकें। इस तरह कांग्रेस संगठन का दायरा भी बढ़ा और उसका विकेंद्रीकरण भी हुआ। कांग्रेस ने यह भी तय किया कि जहां तक संभव हो हिंदी को ही बतौर संपर्क भाषा इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस द्वारा इसको अपनाने के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन में नई ऊर्जा भरी। जनवरी 1921 से पूरे देश में आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली भाइयों के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं में भाषण दिए और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। पहले महीने में ही हजारों छात्रों ने एक आंकड़े के अनुसार 90,000 सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया और राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में भर्ती हो गए। उस समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। शिक्षा का बहिष्कार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सफल रहा। कलकत्ता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल की। उनकी मांग थी कि स्कूलों के प्रबंधक सरकार से अपना रिश्ता तोड़ें। सी आर दास ने इस आंदोलन को बहुत प्रोत्साहित किया और सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बन गए। पंजाब में भी बड़े पैमाने पर शिक्षा का बहिष्कार किया गया। बंगाल के बाद इसी का नंबर था। लाला लाजपत राय ने यहाँ बड़ा काम किया, हालांकि शुरू में वह इसके समर्थक नहीं थे। बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम में भी इस कार्यक्रम पर काफ़ी अमल हुआ, लेकिन मद्रास में इसे सफलता नहीं मिली। वकीलों ने बड़े पैमाने पर अदालतों का बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन देश के जाने माने वकीलों जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, किचलू, वल्लभ भाई पटेल, सी राज गोपालचारी, टी प्रकाशम और आसफ अली के वकालत छोड़ने से लोग बहुत प्रोत्साहित हुए। संख्या की दृष्टि से इस बार भी बंगाल पहले नंबर पर रहा, उसके बाद आंध्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब। बहिष्कार आंदोलन में सबसे अधिक सफलता विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का कार्यक्रम। कार्यकर्ता घर घर जाकर विदेशी कपड़े इकट्ठे करते, स्थानीय लोग एक जगह इकट्ठे होते और इन कपड़ों की होली जलाई जाती। प्रभुदास गांधी महात्मा गांधी के साथ देश के दौरे पर गए थे। वे बताते हैं कि दूर दराज के स्टेशनों पर जब गाड़ी खड़ी होती तो गांधी जी स्टेशन पर खड़े लोगों से कहते कि आप लोग पूरा कपड़ा न सही, विरोध जताने के लिए अपनी पगड़ी, दुपट्टा या टोपी को ही उतार दीजिए। लोग फौरन अपना दुपट्टा, टोपी या पगड़ी, जिसके पास जो होता, उतार देते। प्रभुदास गांधी बताते हैं कि जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ती, इन कपड़ों की होली जलाई जाती, ट्रेन की खिड़की से लपटें दिखाई देती। विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरना भी बहिष्कार आंदोलन में शामिल था। इसका नतीजा यह हुआ कि 1920-21 में जहां 1.2 करोड़ रुपए मूल्य के विदेशी कपड़ों का आयात हुआ था, वही 1921-22 में यह घटकर 57 करोड़ हो गया। इस आंदोलन में एक और कार्रवाई जो बहुत लोकप्रिय हुई वह थी ताड़ी की दुकानों पर धरना। हालांकि यह मूल कार्यक्रम में नहीं था, सरकार को इससे बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचा और वह मजबूर होकर इसके प्रचार में जुट गई। वह बताने लगी कि ताड़ी पीने के कितने फायदे हैं। बिहार और उड़ीसा की सरकार ने तो इतिहास पुरुषों के नाम तक गिनाए कि कितने महान महान लोग शराब का सेवन करते थे। मूसा, सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर, ग्लैडस्टोन, टेनिसन और बिस्मार्क का नाम लिया गया। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया कि अगले 3 महीने तक अपना सारा ध्यान कोष इकट्ठा करने, सदस्य बनाने और चरखा बांटने पर दें। सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया था। यह लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सदस्य संख्या 50 लाख तक पहुंचा दी गई। तिलक स्वराज फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया। 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये इकट्ठे कर लिए गए। चरखे और खादी का खूब प्रचार हुआ। खादी तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक बन गई। छात्रों की एक सभा में गांधी जी खादी पहनने की अपील कर रहे थे तो कुछ लोगों ने शिकायत की कि खादी बहुत महंगी है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि कम कपड़े पहनिए। गांधी जी ने खुद उस दिन से कुर्ता और धोती पहनना छोड़ दिया, लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अधनंगे फकीर की तरह रहे। जुलाई 1921 में सरकार के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। 8 जुलाई को कराची में खिलाफत सम्मेलन में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे इस संदेश को हर मुसलमान सैनिक तक पहुँचाए। इस भाषण के तुरंत बाद मोहम्मद अली अपने साथियों समेत गिरफ्तार कर लिए गए। इस गिरफ्तारी का नतीजा यह हुआ कि इसके विरोध में आयोजित सभाओं में इस अपील को बार बार दोहराया गया, उसका खूब प्रचार हुआ। 4 अक्टूबर को गांधी समेत कांग्रेस के 47 वरिष्ठ नेताओं ने एक बयान जारी कर मोहम्मद अली के बयान की एक तरह से पुष्टि तो की ही, साथ ही यह भी कहा कि हर भारतीय नागरिक और सैनिक का कर्तव्य है कि वह दमनकारी सत्ता से अपना नाता तोड़ ले, उसे किसी तरह का सहयोग न दे। अगले दिन कांग्रेस कार्यकारिणी ने इसी तरह का एक प्रस्ताव पास किया और 16 अक्टूबर को पूरे देश में विभिन्न कांग्रेस समितियों की बैठक में इसको मंजूरी दी गई। सरकार ने अपनी हार मान ली, बहुत बेइज्जती हुई, उसने इस घटना को अनदेखा कर दिया। इसके बाद हुई प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा जो 17 नवंबर 1921 को शुरू हुई थी। जिस दिन वे बम्बई आए पूरे भारत में हड़ताल थी। उसी दिन गांधी जी ने बम्बई में एल्फिंस्टन मिल के अहाते में मजदूरों की सभा में भाषण किया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, लेकिन दुर्भाग्य से इसी दिन बम्बई की सड़कों पर खून खराबा हो गया। गांधी जी की सभा से लौटने वालों और प्रिंस के स्वागत समारोह में भाग लेने वालों में संघर्ष हो गया। शहर में दंगा भड़क उठा और इसके ज़्यादातर शिकार हुए पारसी, ईसाई और एंग्लो इंडियन। इन्हें अंग्रेजी हुकूमत का समर्थक माना जाता था। 3 दिनों तक हिंसात्मक वारदातें होती रहीं। हिंसा और पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने में 58 व्यक्ति मारे गए। गांधी जी जब 3 दिन तक अनशन पर बैठे तब कहीं जाकर हिंसा की आग ठंडी पड़ी। गांधी जी इन हिंसात्मक वारदातों से बहुत क्षुब्ध हुए। प्रिंस ऑफ वेल्स जहां भी गए वीरान सड़कों और बंद दरवाजों ने ही उनका स्वागत किया। असहयोग आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ता ही जा रहा था। कांग्रेस की स्वयंसेवी कोर दिन ब दिन शक्तिशाली होती जा रही थी, मानो समांतर पुलिस दस्ते का गठन हो रहा हो। वर्दी और काम के तरीके देख सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक था। कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस समितियों को यह इजाज़त दे दी थी कि जब भी उन्हें लगे कि जनता कानून अवज्ञा आंदोलन की तैयार है, वे आंदोलन छेड़ सकती हैं। मिदनापुर बंगाल और गुंटूर जिले आंध्र के चिराला पिराला और पेंडानंडीपाडू तालुका में तो कर अदा न करने का आंदोलन छिड़ ही गया था। असहयोग आंदोलन अप्रत्यक्ष रूप में भी प्रभाव डाल रहा था। अवध उत्तर प्रदेश में किसान सभा और किसान आंदोलन 1918 से ही जोर पकड़ते जा रहे थे। असहयोग के प्रचार से जिसे करते हुए जवाहरलाल नेहरू भी अवध के देहातों में घूम रहे थे, इससे बल मिला। कुछ ही दिनों में यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि बैठक किसान सभा की है या असहयोग आंदोलनकारियों की। केरल में मालाबार में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ने खेतिहर मुसलमानों को उनके भूस्वामियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ने के लिए उकसाया, लेकिन दुर्भाग्य से आंदोलन ने यहाँ कहीं कहीं सांप्रदायिकता का रुख अख्तियार कर लिया। असम में चाय बागान के मजदूर हड़ताल पर चले गए। सरकार ने जब हड़ताली मजदूरों पर गोली चलाई तो स्टीमर पर काम करने वाले मजदूर भी हड़ताल पर चले गए। असम बंगाल रेलवे कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर इनका साथ दिया। बंगाल के राष्ट्रवादी नेता जी एम सेनगुप्त ने इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिदनापुर में एक गोरी जमींदारी कंपनी के खिलाफ काश्तकारों की हड़ताल का नेतृत्व किया कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के एक छात्र ने। आंध्र में वन कानून के खिलाफ आंदोलन छिड़ा। राजस्थान में किसानों और आदिवासियों ने आंदोलन छेड़ा। पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों के कब्जे के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। यह वास्तव में देशव्यापी असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था। तमाम दमन के बावजूद अकाली आंदोलनकारी अहिंसा के रास्ते से डिगे नहीं। इस तरह के हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमारा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि असहयोग आंदोलन ने तमाम स्थानीय आंदोलनों को जन्म दिया और जो पहले से चल रहे थे उन्हें और बल दिया। बात दीगर है कि ये आंदोलन कहीं कहीं असहयोग आंदोलन की नीतियों और अहिंसा के सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। ऐसी हालात में सरकार समझ गई कि अब मामले को अनदेखा करने से काम चलने वाला नहीं है, दमन का रास्ता अख्तियार करना ही होगा। सितंबर 1920 में जब आंदोलन शुरू हुआ था, सरकार का मानना था कि दमन से विद्रोह की आग और भड़केगी तथा जो लोग मारे जाएंगे उन्हें जनता शहीद का दर्जा देगी। मई 1921 में नए वायसराय लॉर्ड रैंडी ने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी से कहा कि वे अली भाइयों को अपने भाषणों में हिंसा भड़काने वाली बातें न कहने के लिए मनाएं। सरकार का उद्देश्य था गांधी जी और अली भाइयों में आपसी फूट डालना, लेकिन वह इसमें असफल हुई और गांधी रैंडिंग वार्तालाप यहीं पर समाप्त हुआ। दिसंबर आते आते सरकार को महसूस हो गया कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। उसने अपनी नीतियों में परिवर्तन की घोषणा की। स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया गया और इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया जाने लगा। सबसे पहले सी आर दास को गिरफ्तार किया गया और बाद में उनकी पत्नी वासंती देवी को। इस गिरफ्तारी का बंगाल में व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ और हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां दी। अगले 2 महीने के भीतर पूरे देश में लगभग 30,000 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में तो बड़े नेताओं में केवल गांधी जी ही बाहर रह गए थे। दिसंबर के मध्य में मालवीय जी के माध्यम से बातचीत करके मामला सुलझाने की कोशिश की गई, पर इसके साथ जो शर्तें जुड़ी थीं खिलाफत आंदोलनकारियों के हितों के विरुद्ध थीं, अतः गांधी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। वैसे भी ब्रिटेन की सरकार समझौते के मूड में नहीं थी और उसने वायसराय लॉर्ड रेडिंग को आदेश दिया कि वह वार्तालाप को वहीं समाप्त कर दें। दमन का दौर चलता रहा, बैठकों सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अखबारों की आवाज़ बंद कर दी गई, कांग्रेस और खिलाफत कार्यालयों पर रात को छापा पड़ना आम बात हो गई थी।